आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि दुनिया 2015 में निर्धारित 1.5 डिग्री वार्मिंग सीमा पर नहीं आ पाएगी। ब्राजील के अमेज़न की उष्णकटिबंधीय गर्मी में विश्व भर के नेता संयुक्त राष्ट्र वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 के लिए एक साथ पहुंचे हैं। पिछले 17 वर्षों में अमेज़न के लगभग 50% वन क्षेत्र के गायब होने के साथ ब्राजील की नदी के मुहाने के पास तेल ड्रिलिंग की हालिया मंजूरी इस वार्ता पर अजीब तरह से लटकी हुई है। ऑक्सफैम की कार्यकारी निदेशक विवियाना सेंटियागो का कहना है कि अमेज़न सिर्फ एक प्रतीक से कहीं अधिक है।
The world needs to understand that Amazon is not only a word, it's a real space that are right now facing consequence. I think that understand the importance about Amazon will connect people with this urgency. We need to protect, we need to find a way to live, to really live in harmony with Amazon and the entire world.
संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को पुष्टि की कि 2025 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्षों में एक होने के कारण जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर सार्थक कार्यवाही की तत्कालिकता लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सरकारें विकल्प चुन सकती हैं कि क्या वे खुद नेतृत्व करेंगी या फिर बर्बादी का नेतृत्व स्वीकार करेंगी।
Even a temporary average overshoot will have dramatic consequences. It could push ecosystems past irreversible tipping points, expose billions to unlivable conditions, and amplify threats to peace and security. Every fraction of a degree means more hunger, displacement, and loss, especially for those least responsible. This is moral failure and deadly negligence.
COP30 पेरिस समझौते के 10 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें लगभग 200 देश ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक यानी प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करने पर सहमत हुए थे। शिखर सम्मेलन में गुटेरेस ने निराशापूर्ण घोषणा की कि दुनिया समय से पहले ही उस निशान को पूरा करने में विफल हो चुकी है।
प्रेसिडेंट लुला, यू हैव कॉल्ड दिस द कॉप ऑफ ट्रुथ। आई कुड नॉट एग्री मोर। And the hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1.5 degrees. Science now tells us that the temporary overshoot between the 1.5 limit, starting at the latest in the early 2030s, is inevitable.
इस वर्ष के शिखर सम्मेलन से एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो ट्रंप प्रशासन के तहत पेरिस जलवायु समझौते से हट गया है। अमेरिका के दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में से एक होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु संकट को दुनिया पर किए गए सबसे बड़े नुकसान में से एक करार दिया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अनुपस्थिति मानवता को पाताल की ओर ले जाने की उनकी इच्छा को दर्शाती है।
Today, literally, Mr. Trump is against humanity. His absence here shows it. Trump is against humanity. What should we do then? Leave him alone? Forgetting is the greatest punishment. When he wants to speak, let us speak about life, nothing else.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अनुपस्थित हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है और चीन ने जलवायु कार्यवाही को दोगुना करने का संकल्प लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में चीन को चरम स्तर से कम 30% तक उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होगी। इसके बजाय चीन ने केवल 7-10% की कटौती के लक्ष्य की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन में 62-70% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जो यूरोप के 66-72.5% के लक्ष्य से थोड़ा कम है। लेकिन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी की इस शिखर सम्मेलन में शामिल ना होने के लिए आलोचना हो रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ इसकी सह मेजबानी के लिए नाम आगे रखा है। 2026 के आयोजन की मेजबानी का अधिकार इस साल के COP शिखर सम्मेलन के दौरान तय किया जाएगा और ग्रीन पीस ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक COP 31 के मुखी डॉक्टर साइमन ब्रैडशॉ का कहना है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति एक अजीब संकेत देती है.
If ever there was a moment for Australia, for Prime Minister Anthony Albanese to show up, now is it. Because we are an important player in the scheme of things. We're an influential middle power. We're a major energy producer. We really need to be there helping set an ambitious agenda for this COP.
यूरोपीय संघ और यूके के नेता भी इस सम्मेलन में उपस्थित हैं. जलवायु शिखर सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित लोगों में से एक है छोटे द्वीप राज्य देशों का गठबंधन यानी Alliance of Small Island State Nations. ये छोटे द्वीप राज्य बढ़ते समुद्री स्तर के कारण अस्तित्व खत्म होने के खतरे का सामना कर रहे हैं और यही देश विश्व के बड़े उत्सर्जकों को जवाब दे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. बाबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने मिथेन उत्सर्जन को कम करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात की.
The reality is that methane is more destructive as we know. 80 times more destructive than carbon. And yet we continue to see methane flow in the atmosphere without significant actions to stop it.
कार्बन उत्सर्जन वातावरण में कई सदियों तक रहता है जबकि मिथेन सिर्फ 12 से 15 साल तक रहता है. जहां मिथेन उत्सर्जन का लगभग 40% हिस्सा कृषि से आता है वहीं जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के उत्पादन से होने वाले रिसाव से लगभग 35% मिथेन निकलता है. यदि तेल और गैस कंपनियां इसे भड़कने से रोकने और मिथेन रिसाव को ठीक करने के लिए कार्यवाही करती हैं, तो मिया मोटली का कहना है कि पृथ्वी को कार्बन उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए अधिक समय मिल सकता है.
This is the only chance that we have to reverse the temperatures. And the world, my friends, has never been changed by spectators and naysayers. The world is changed by people of action. Do we need everybody acting at the same time? That would be ideal. But if we don't, then we must construct a coalition of the willing and show everyone what they stand to benefit while we fight for the prosperity and stability of people and planet. I'm obliged to you. Thank you.
SBS न्यूज के लिए सिडनी लैंग और एडवीना गायनेन की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने. धन्यवाद.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.